इससे पूर्व के पाठ में गुण का निरूपण संपन्न हुआ। अब पदार्थ में जो तीसरा पदार्थ है द्रव्य गुण कर्म, अब कर्म का निरूपण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ जो कर्म है ये व्याकरण शास्त्रीय कर्म नहीं है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म वाला कर्म। यहाँ कर्म का तात्पर्य है क्रिया, तो कर्म का निरूपण अर्थात क्रिया का निरूपण कि क्रिया कैसी होती है, उसके कितने भेद हैं, ये सब यहाँ पर बताए जाएंगे। इसका लक्षण बताया चलनात्मकम कर्म, चलने का नाम है कर्म। चलन आत्मकम, आत्मकम माने स्वरूपकम, माने चलना है स्वरूप जिसका, उसे हम कर्म कहते हैं। गुण इव द्रव्य मात्र वृत्ति, जैसे गुण द्रव्य मात्र वृत्ति होता है अर्थात केवल द्रव्य में ही वृत्ति होता है, द्रव्य में ही रहता है, उसी तरह से कर्म भी केवल द्रव्य में ही रहता है। और विभु द्रव्य परिमाणेन मूर्तत्व अपर नामना सह एक अर्थ समवेतम। और क्या है कि द्रव्य जो है वो दो प्रकार का है, एक विभु द्रव्य और एक अविभु द्रव्य। तो यहाँ पर विभु द्रव्य मतलब व्यापक द्रव्य और विभु द्रव्य मतलब अव्यापक द्रव्य। तो अविभु का अर्थ यहाँ पर कर लें विभु भिन्न। तो अविभु द्रव्य परिमाणेन माने विभु भिन्न द्रव्य में जो परिमाण है, तो विभु भिन्न द्रव्य में परिमाण कौन सा परिमाण होगा, वो आगे कहते हैं कि मूर्तत्व अपर नामना, माने मूर्तत्व है अपर नाम जिसका, अर्थात मूर्तत्व परिमाण। तो अविभु द्रव्य परिमाणेन का अर्थ हो जाएगा कि विभु भिन्न द्रव्य में रहने वाला जो मूर्तत्व नाम का परिमाण। फिर से सुन लीजिए, विभु भिन्न द्रव्य में रहने वाला मूर्तत्व नाम का जो परिमाण, उस परिमाण तेन सह उस परिमाण के साथ एक अर्थ समवेतम, एक अर्थ में समवेत रहता है कर्म। एक अर्थ मतलब एक द्रव्य में समवेत रहता है अर्थात समवाय संबंध से स्थित रहता है। आगे कहते हैं कि विभाग द्वारा पूर्व संयोग नाशे सति उत्तर देश संयोग हेतुश्च, और यह जो कर्म है यह उत्तर देश संयोग में हेतु होता है। उत्तर देश संयोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप विदा हुए, चलना शुरू किए, तो जहाँ से आपने चलना शुरू किया वो हो गया पूर्व देश, और जहाँ पर चल करके आप पहुँचे वो हो गया उत्तर देश। अब यहाँ गौर करिए कि जब आपने एक जगह से दूसरी जगह को चला और दूसरी जगह पहुँचा, तो क्या हुआ कि पूर्व देश जो था उसके साथ तो आपका विभाग हुआ, और जो उत्तर देश है जहाँ आप पहुँचे हैं चल करके, उस उत्तर देश के साथ आपका संयोग हुआ। तो ये जो विभाग के द्वारा विभक्त होने के कारण, अलग होने के कारण जो पूर्व देश संयोग का नाश होता है और उत्तर देश संयोग बनता है, उत्पन्न होता है, उसमें यह जो कर्म है वह हेतु का काम करता है, कारण का काम करता है। अर्थात अगर आप चलेंगे नहीं तो पूर्व देश के संयोग का नाश नहीं होगा और उत्तर देश के साथ आपका संयोग नहीं होगा। तो विभाग के द्वारा अलग होने के माध्यम से, अलग होने के कारण जो पूर्व देश के संयोग का नाश होता है और उत्तर देश के साथ आपका संयोग होता है, उसमें हेतु, उसमें ये कर्म जो है वह हेतु का काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर कर्म के स्वरूप को बताया गया कि चलने का नाम जो है वह है कर्म न्याय दर्शन के मत से, और वह गुण की तरह केवल द्रव्य में कर्म रहता है, और अविभु द्रव्य जो है माने विभु भिन्न द्रव्य में जो मूर्तत्व परिमाण है, मूर्तत्व परिमाण का भी मतलब ऐसे आप जानते होंगे, फिर भी बता दूं, जिसका स्वरूप जो है ना प्रत्यक्ष हो उसमें मूर्तत्व परिमाण माना जाता है। जानते मूर्त और अमूर्त, तो इसको सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं जिसमें मूर्ति हो वह हो गया मूर्त, जिसमें मूर्ति न हो वो हो गया अमूर्त। तो मूर्ति होगी तो वह प्रत्यक्ष होगा, मूर्ति नहीं होगी तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो इस तरह से विभु भिन्न द्रव्य में मूर्तत्व परिमाण के साथ यह एक अर्थ में समवेत होता है कर्म, और विभाग के द्वारा जो पूर्व देश संयोग का नाश होता है और उत्तर देश का संयोग होता है उसमें यह कर्म हेतु बनता है। अब यहाँ पर कर्म के कितने भेद हैं वो बता रहे हैं कि तच्च उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन भेदात पंचविधम। ये पांच प्रकार के कर्म हैं, उत्क्षेपण नाम का, अपक्षेपण नाम का, आकुंचन नाम का, प्रसारण नाम का और गमन नाम का। अब इन पांचों कर्मों का परिचय मैं अपनी ओर से दिला देता हूं। ऐसा है कि ये जो कर्म है, ये कर्म इन कर्मों का आश्रय कौन है? द्रव्य है। अर्थात ये कर्म किस में रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। तो द्रव्य को जो ऊपर ऊपर की ओर ले जाने वाली क्रिया है उसको कहते हैं उत्क्षेपण। जैसे ऊपर की ओर आप किसी मिट्टी के ढेले को फेंकेंगे या पत्थर को फेंकेंगे तो उसको उत्क्षेपण कहा जाता है। तो द्रव्य को ऊपर की ओर फेंकना जहाँ पर हो उसको हम उत्क्षेपण कर्म कहेंगे। इसी तरह से द्रव्य को जब नीचे की ओर फेंकेंगे तो उसको हम अपक्षेपण कर्म कहेंगे। इसी तरह से द्रव्य को संकुचित करने वाली जो क्रिया है, संकुचित करना समझते हैं ना, वो फैलाव जो है किसी वस्तु का, उसके फैलाव को कम करना, उसको आकुंचन कहते हैं। तो कर्म का जो आश्रय द्रव्य है उस द्रव्य को अगर संकुचित करने की क्रिया होगी तो उसका नाम होगा आकुंचन क्रिया। इसी तरह से कर्म का जो आश्रय द्रव्य है उसको फैलाने वाली जो क्रिया होगी उसका नाम होगा प्रसारण कर्म। और गमन तो आप जानते ही हैं, सामान्य तौर पर ये जो चला जो जाता है, आगे पीछे जो हम पाँव करते हैं है, वह गमन है। और जैसे गाड़ियाँ चलती हैं तो उसमें पहिए चलते रहते हैं। इस तरह से ये पांच प्रकार के जो हैं कर्म होते हैं। अब यहीं पर गमन कर्म को ही ले लीजिए, तो गमन कर्म जो है, जैसे देवदत्त नाम का व्यक्ति अगर चलता है, देवदत्त गच्छति, तो वहाँ पर गमन कर्म का आश्रय कौन है? देवदत्त है। और देवदत्त क्या है? द्रव्य है। इस तरह से कर्म जो है द्रव्य में रहता है, और इसमें कुल मिलाकर के पांच प्रकार के ही कर्म की मान्यता जो है न्याय दर्शन वालों ने दी है। ऐसा नहीं है कि इतने ही कर्म हैं, और भी कर्म, जैसे भ्रमण आदि कर्म भी है, लेकिन केशव मिश्र कहते हैं आगे कि भ्रमणादयस्तु गमन ग्रहणे नैव गृह्यन्ते, ताकि गमन के अंतर्गत ही भ्रमण आदि का भी अंतर्भाव कर लेंगे, माने भ्रमण आदि जो कर्म है उसको भी गमन कर्म ही मान लेंगे, तो अतिरिक्त भेद इसमें नहीं होंगे, ज्यादा भेद नहीं होंगे। इस तरह से कर्म के बारे में बता करके अब द्रव्य गुण कर्म के बाद सामान्य, ये चौथे नंबर का पदार्थ है, इस सामान्य पदार्थ को बताते हैं। कहते हैं कि अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम। सामान्य किसे कहते हैं? तो अनुवृत्ति प्रत्यय का जो हेतु हो, हेतु माने जानती है ना कारण, तो अनुवृत्ति प्रत्यय का जो कारण हो उसको सामान्य कहा जाता है। मैंने कई बार कहा है पहले कि सामान्य मतलब जाति, तो ये सामान्य का लक्षण है, ये जाति का भी लक्षण है, परीक्षा में कुछ भी पूछे आपको यही लिखना है। तो अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, सामान्यम माने जाति ही, हेतु मतलब कारणम। और ये अनुवृत्ति प्रत्यय क्या है? तो अनुवृत्ति प्रत्यय का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो होगा अनुगत प्रतीति। प्रत्यय का अर्थ कर लीजिए प्रतीति, प्रतीति मतलब ज्ञान, और अनुवृत्ति का अर्थ यहाँ पर व्याकरण शास्त्र वाली अनुवृत्ति नहीं करना, अनुवृत्ति का अर्थ करना है यहाँ पर अनुगत। तो अनुगत प्रतीति का हेतु सामान्य होता है, माने सामान्य किसको कहते हैं, तो अनुवृत्ति प्रत्यय के हेतु को सामान्य कहते हैं। अनुवृत्ति प्रत्यय मतलब अनुगत प्रतीति, तो प्रतीति मतलब ज्ञान हुआ, ये तो जान ही गए। अब ये अनुगत क्या है, तो इसको समझना है कि एक आकार की जो बुद्धि होती है उसको हम कहते हैं अनुगत प्रतीति। बुद्धि ज्ञान प्रतीति एक ही बात है, तो एक आकार वाला जो है ना उसको हम कहते हैं अनुगत। अब जैसे 100 घड़े एक जगह रखे हुए हैं, तो 100 के 100 घरों में एक, सभी घरों में एक ही एक धर्म जो है वह तो रहेगा ही। कौन सा वो धर्म है, तो घटत्व धर्म। तो सैकड़ों घरों में जो अयम घटः अयम घटः अयम घटः इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, इसी बुद्धि को हम कहते हैं अनुगत बुद्धि। क्योंकि ये जो बुद्धि है वो एक आकार वाली बुद्धि है, क्योंकि सब बुद्धि का में एक ही आकार है, अयम घटः अयम घटः अयम घटः। तो इस तरह से अनेक में जो एक आकार वाली प्रतीति होती है उसी का नाम है अनुवृत्ति प्रत्यय, और उस अनुवृत्ति प्रत्यय का हेतु जो होता है उसी को हम सामान्य कहते हैं। अब देखिए कि 100 के 100 घरों में जो अयम घटः अयम घटः अयम घटः ये जो अनुवृत्ति प्रत्यय होता है इसमें हेतु कौन है, तो सामान्य मतलब जाति है। घटत्व जाति जो है सैकड़ों घरों में विद्यमान है, उस घटत्व जाति के कारण ही जो है अयम घटः इस तरह का अनुवृत्ति प्रत्यय होता है, इस तरह की एकाकार बुद्धि होती है, अथवा कह लीजिए इस तरह का जो की जो है अनुगत प्रतीति होती है। तो बहुत में एक तरह की जो प्रतीति है, एक तरह की जो बुद्धि है उसी का नाम है अनुगत प्रतीति अथवा अनुवृत्ति प्रत्यय अथवा एकाकार बुद्धि, और उस एकाकार बुद्धि का जो कारण होता है वह है सामान्य। सामान्य को दूसरे शब्द से अगर कहेंगे तो जाति कह लीजिए। द्रव्यादि त्रय वृत्ति, और यह जो जाति है यह जाति तीन में रहती है, किसमें किसमें, तो द्रव्य आदि त्रय वृत्ति। द्रव्य आदि त्रय कौन है, द्रव्य गुण कर्म, माने सामान्य जो है यह द्रव्य वृत्ति भी है, गुण वृत्ति भी है और कर्म वृत्ति भी है। द्रव्य में भी रहता है, गुण में भी रहता है और कर्म में भी रहता है। फिर नित्यम, और यह जो सामान्य है यह नित्य है। एकम, यह सामान्य एक है। और अनेकानुगतम च, और अनेक में अनुगत रहता है यह सामान्य। अनेक में अनुगत, अनुगत का यहाँ पर वृत्ति अर्थ कर लीजिए, जैसे वहाँ पहले कहा ना द्रव्यादि त्रय वृत्ति, इसी तरह से यहाँ कह लीजिए अनेक वृत्ति। यह जो सामान्य है यह अनेक में अनुगत होता है, अर्थात अनेक में वृत्ति होता है, वृत्ति होता है मतलब रहता है। तो इस तरह से फिर से एक बार पीछे की से चलते हैं कि अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, अनुवृत्ति प्रत्यय मतलब अनुगत प्रतीति, अनुगत प्रतीति मतलब एक आकार वाली बुद्धि, ठीक है। तो अनुवृत्ति प्रत्यय का जो हेतु है उसे हम सामान्य कहते हैं। द्रव्यादि त्रय वृत्ति, यह सामान्य द्रव्य वृत्ति है, गुण वृत्ति है और कर्म वृत्ति है, माने द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाला होता है। नित्यम, नित्य होता है सामान्य। एकम, एक होता है सामान्य। और अनेक अनुगतम च, और अनेक में अनुगत होता है, माने अनेक में वृत्ति होता है, अनेक में यह रहता है। जैसे अनेक घरों में एक घटत्व जाति रहती है तो अनेकानुगत हो गया। अब आगे कहते हैं कि तच्च द्विविधम परम अपरम च। तच्च माने वह जो सामान्य है वह द्विविध होता है, दो प्रकार का होता है। परम अपरम च, पर सामान्य और अपर सामान्य। परम सत्ता बहु विषयत्वात्। अब ये जो है ना पर, तो दो तरह का सामान्य हुआ। तो जैसे पर सामान्य का उदाहरण दिया कि परम पर सामान्य क्या है, तो सत्ता, सत्ता नाम की जो जाति है उसे हम पर सामान्य कहेंगे। क्यों इसको पर सामान्य क्यों कहेंगे सत्ता को, तो बहु विषयत्वात्, क्योंकि इसका इसके जो विषय हैं वो बहुत हैं। क्योंकि सत्ता नाम की जाति जो है ना बहुत में रहने वाली जाति है, बहु विषयक ये सत्ता जाति है, इसलिए इसको हम पर सामान्य कहते हैं। तात्पर्य ये निकला जो बहुत में रहे उसे हम पर सामान्य कहेंगे। साच अनुवृत्ति प्रत्यय मात्र हेतुत्वात् सामान्य मात्रम। साच मान वह जो सत्ता नाम की जाति है, पर जाति पर सामान्य, वह अनुवृत्ति प्रत्यय मात्र का हेतु है। अनुवृत्ति प्रत्यय मैंने बताया है अनुगत प्रतीति, तो अनुगत प्रतीति का जो है ना वह हेतु होता है सामान्य मात्रम, और वह सामान्य मात्र है अर्थात पर सामान्य है। ठीक है, तो अनुगत आकार प्रतीति मात्र का कारण होने के कारण उसको हम सामान्य कहते हैं, जाति कहते हैं। अपरम द्रव्यत्वादि, और अपर सामान्य का उदाहरण दिया द्रव्यत्वादि, माने द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व ये सब जो है ना ये अपर सामान्य के अंतर्गत आते हैं। क्यों? तो अल्प विषयत्वात्, इसके विषय अल्प हैं, विषय अल्प हैं मतलब अपेक्षाकृत अल्प हैं। सत्ता जो है वह द्रव्य गुण कर्म तीनों में सत्ता रहती है, लेकिन द्रव्यत्व जो रहेगा वो केवल द्रव्य में रहेगा, गुणत्व जो रहेगा केवल गुण में रहेगा, कर्मत्व जो रहेगा वो केवल कर्म में रहेगा। तो इस तरह से विषय इसका कम है, इसीलिए जो जिसका कम विषय हो उसको हम अपर सामान्य कहेंगे, जिसका अधिक विषय हो उसको हम पर सामान्य कहेंगे। तच्च व्यावृत्ते अपि हेतुत्वात् सामान्यम सद विशेषा, और तच्च माने ये जो अपर सामान्य होता है यह व्यावृत्ति का भी हेतु होता है। व्यावृत्ति देखिए यहाँ पर सामान्य को बताया गया अनुवृत्ति प्रत्यय का हेतु, और अपर सामान्य को बताया गया व्यावृत्ति अपि हेतु, माने अनुवृत्ति प्रत्यय का तो यह हेतु है ही अपर सामान्य, और व्यावृत्ति का भी हेतु है। कहेंगे कि गुरु जी ये व्यावृत्ति क्या है, क्या है? तो व्यावृत्ति कहते हैं भेद बुद्धि को, भेद ज्ञान को, माने यह इससे भिन्न है, इस तरह की जो बुद्धि है इसका नाम है व्यावृत्ति। और इस व्यावृत्ति में भी जो है ना हेतु होता है कौन, ये अपर सामान्य, इसी को जो है ना विशेष भी कहा जाता है। अब जैसे देखिए गो और महिषी दोनों में भेद है, गो से व्यावृत्त महिषी है और महिषी से व्यावृत्त गो है, कैसे? तो गोत्व जो जाति है वह गो में है महिषी में नहीं है, महिषित्व जातु जो है महिषी में है गो में नहीं है। तो इस तरह से यह जो अपर सामान्य जो होता है वह व्यावृत्ति में भी हेतु होता है, एक से दूसरे को अलग करके बताने में, एक से दूसरे को भिन्न बताने के लिए भी अपर सामान्य का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर सामान्य और अपर सामान्य का भेद बताया, और आज का पाठ यहीं पर हम रोकते हैं।